ये आकाशवाणी है। अब आप अभिषेक कपिल से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 121वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित होगा। केंद्र सरकार ने सभी मीडिया चैनलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आतंकवाद विरोधी अभियानों का सीधा प्रसारण नहीं करने का परामर्श जारी किया है। करगिल युद्ध, 26/11 मुंबई आतंकी हमले और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं के दौरान अनियंत्रित कवरेज ने राष्ट्रीय हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने परामर्श में मीडिया से रक्षा अभियानों या गतिविधियों से संबंधित रिपोर्टिंग में सूत्रों के हवाले से खबर चलाने से दूर रहने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा है कि समय से पहले ही संवेदनशील सूचनाओं का खुलासा करना देश विरोधी तत्वों के लिए सहायक साबित हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंप दी है। अब ये एजेंसी इस आतंकवादी हमले की औपचारिक जांच करेगी। इससे पहले भी NIA की टीम ने हमले की जगह का दौरा किया था। कुछ दिन पहले हुए इस भयानक हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को गृह मंत्रालय के अधिसूचित समय सीमा के अनुसार पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए उचित और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। केंद्र शासित प्रदेश के सभी उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों की इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपराज्यपाल ने अधिकारियों से सुरक्षा उपायों और प्रक्रियाओं को भी लागू करने को कहा। ईरान और अमेरिका के बीच तीसरे दौर की परमाणु वार्ता मस्कट में समाप्त हो गई। दोनों पक्षों ने अगले सप्ताह वार्ता जारी रखने पर सहमति जताई। इन वार्ताओं का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दशकों पुराने गतिरोध को हल करना है। वार्ता के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा कि इस दौर की वार्ता पहले से कहीं ज्यादा गंभीर रही और दोनों पक्ष धीरे धीरे परमाणु मुद्दों के तकनीकी पहलुओं में ज्यादा गहराई में जा रहे हैं। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया है कि वे एक नया समझौता करने में सफल होंगे जो ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोक सकेगा। ईरान के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित शाहिद राजाई बंदरगाह के पास हुए एक भीषण धमाके में मृतकों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है, जबकि कम से कम 750 लोग घायल हो गए हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर पीड़ितों के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। कलिंग सुपर कप के क्वार्टर फाइनल में फुटबॉल क्लब गोवा ने पंजाब फुटबॉल क्लब को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में हुए इस मैच में जीत के बाद सेमीफाइनल में फुटबॉल क्लब गोवा का मुकाबला मोहन बागान सुपर जायंट्स के साथ होगा। सेमीफाइनल 30 अप्रैल को खेला जाएगा। बैडमिंटन में आज से चीन के शियामेन में शुरू हो रहे सुधीर रमन कप 2025 में भारतीय टीम के नेतृत्व की अगुवाई पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन करेंगे। सुधीर रमन कप का आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन करता है। हर मुकाबले में 5 मैच होते हैं, जिनमें पुरुष सिंगल्स, महिला सिंगल्स, पुरुष डबल्स, महिला डबल्स और मिक्स्ड डबल्स के मुकाबले होते हैं। IPL T20 क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया अहम मैच लगातार बारिश और आंधी तूफान के कारण रद्द हो गया। दोनों टीमों को 1-1 अंक दिया गया। कोलकाता को 202 रनों का लक्ष्य मिला था और जवाब में उसने एक ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बनाए थे, तभी बारिश के कारण खेल रोक देना पड़ा। इस मुकाबले के बाद अंक तालिका में पंजाब किंग्स 11 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि कोलकाता 7 अंकों के साथ 7वें स्थान पर है। आज मुंबई में दोपहर 3:30 बजे मुंबई इंडियंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। दूसरा मैच दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।